कोई मसाइल तो हल हो जाएंगे। और प्रेसिडेंट अर्दोगान ने कहा है कि हमारी ये जो मीटिंग है फिर से एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी हमारे रिलेशंस में। और इन्होंने कहा जी कि ये जो भी मारामारी चलती रही है, जो आपने चलाई थी उससे पहले 2018-2019 में, जिसमें कि 200 पैलेस्टीनियंस गाजा में आपने मार दिए थे, उस तरह की बातें अब अगर ना हो तो ये ताल्लुकात ऐसे ही चलते रहेंगे। बहरहाल जी, लास्ट ईयर से, जुलाई से ही इनके बीच में बातचीत चल रही थी और अब जो है इनके बीच में हो गई है दोस्ती। टर्की जो है इस वक्त आपको पता ही है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस में चल रहा है, और उनको लगता है कि इसराइल के साथ दोस्ती इस वक्त जो है बहुत फ्रूटफुल हो सकती है, क्योंकि इसराइल जो है इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग है और इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है बहुत सारी। तो
इनकी तो पहले भी दोस्ती थी, वो तो वापस भेज दिए थे अपने,
हाँ, एम्बेसडर्स भेज दिए थे दोनों,
तो अब दोबारा से वापस बुला रहे हैं,
वापस बुला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये उन्होंने कहा है, टर्की ने आज बिल्कुल क्लियरली कहा है, वो जो उनके टर्किश फॉरेन मिनिस्टर है मेवलेट गजोवलू, उन्होंने कहा है जी कि हम पैलेस्टाइन के ऊपर जो है हमारा स्टांस वही रहेगा, और आप जो है ये वेस्ट बैंक के अंदर जो आपके सेटलमेंट्स हैं इनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा।
ठीक,
हाँ, तो स्टांस वही है, बहरहाल अब जो है दोस्ती है। अच्छा जी, कैपिटल मार्केट्स की स्टोरियां हम लाते रहते हैं कभी कभी, तो आज फिर से ब्लूमबर्ग की स्टोरी है, और आज जनाब न्यूजीलैंड के अंदर तो ओवरनाइट लैंडिंग रेट जो उनके जो उनका बैंक है सेंट्रल बैंक, उसने जो है, सोचे माजिद भाई कितना इन्होंने बढ़ाया होगा,
1.5%।
हाँ, तो अब 1.5% बढ़ाने से 3% को अब ये टच कर रहा है, और उन्होंने कहा है जी कि रीचिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर ये 4% तक जा सकता है। न्यूजीलैंड की इतनी पतली हालत है, और वो कह रहे हैं जी कि ये जो है यही 4% रेट जो है 2024 तक चलेगा, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 7.3% को टच कर रही थी जून के अंदर, जो कि 32-year हाई है। तो मुल्क जो है उसकी हालत काफी पतली है, और
ऑल ऑफ यूरोप,
हमने तो कल ही कह दिया था माजिद भाई, सारे यूरोप में रिसेशन आएगा, सारे यूरोप में
पूरे।
तो
आज उन्होंने कहा कि 19 कंट्रीज में, बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो है ना, उन्होंने कहा कि 19 कंट्रीज में इंक्लूडिंग यूके
जी, तो इन्होंने आज कहा, हमने कल ही कह दिया था,
हमने पहले कहा था,
उससे भी पहले भी कहा था,
पहले भी कहा था, ये रिसेशन तो आना ही आना है,
हां आना ही है।
वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में, नॉट नेक्स्ट ईयर, नॉट डिसम्बर,
नो दिस ईयर,
अक्टूबर
ईयर,
अक्टूबर में इनका रिसेशन आ जाएगा,
आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल,
क्योंकि यूके का जो इन्फ्लेशन है दैट इज गोइंग टू टच 13.3%।
या बिल्कुल ऐसे। अच्छा जनाब, आज कुछ काफी मिली जुली सी खबरें आई हैं अमरीका से, अमरीका में बहुत कुछ चल रहा है, तो उसमें जो है वो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ आपको पता है कुछ बाय इलेक्शंस भी वहां पे चल रहे हैं और कुछ और भी चीजें हैं ट्रंप साहब से रिलेटेड भी चल रही हैं। जो यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने आज कहा है, आपको पता ही है कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि ट्रंप साहब की ये जो मार-ए-लागो एस्टेट है इसके अंदर हम जाके रेड्स करेंगे, और उन्होंने कहा था कि हमें पता चला है कि इसके अंदर कुछ न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने रखे हुए हैं, और ट्रंप साहब ने इसका बड़ा बुरा मनाया था, और उन्होंने कहा था कि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे, इनको यहां से रिमूव करने की इजाजत नहीं थी, और ये इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा रही है और किस तरह से ये हो रहा है, और ये सारा कुछ जो नवंबर में अब जो अपकमिंग मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसके बीच में उसकी वजह से मुझे जो है बदनाम किया जा रहा है और ये सारा कुछ किया जा रहा है। अच्छा, उसमें आज जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उसने अपोज आज किया है कि हम नहीं रिलीज करेंगे वो एफिडेविट जो शो करता है कि रेड की पावर दी गई थी एफबीआई को कि वो जाके करे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आपने बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिवील कर दिए हैं, और जो कैपिटल हिल पे जो कुछ हुआ था वो कर दिया है और चीजें आप रिवील करते जा रहे हैं, तो ये एफिडेविट आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम इसको बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकते कि ये किया जाए। अब उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मीडिया पूछना चाह रहा है कि क्या लिखा है कि जिसकी वजह से इन्होंने ये स्टेप ली और जाके रेड की, वो हमको जानना बहुत जरूरी है। अब ये उनको पता नहीं चल रहा है कि वो उसके अंदर क्या है। ट्रंप साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि आपने मेरी जो आजादी है और मेरी प्राइवेसी है उसको आपने वायलेट किया है, क्योंकि आप मुझे 2024 के जो इलेक्शंस हैं उनमें ना लड़ने से बाहर करना चाहते हैं, इसलिए आपने ये सारा कुछ किया है। अटॉर्नी जनरल मैरिक गार्लैंड जो हैं उन्होंने कहा है कि आप भाई अनसील अगर कुछ इसमें से चीजें कर सकते हैं आप कर लें, और ये भी बता दें कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है जिसमें कि आपने जाके रेड की है। बाकी लोग जो हैं जस्टिस डिपार्टमेंट के, वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं, कभी कभी बहुत ज्यादा जो है ये चीजें सेंसिटिव होती हैं जो कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होती हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं। FBI कहता है कि हमने वो जो 11 खासतौर पर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जहां यहां से रेड में जो मार-ए-लागो एस्टेट से हमने लिए हैं वो अगर हमने शो किए तो वो स्टेट की सिक्योरिटी के लिए अच्छे नहीं है,
क्योंकि वो क्लासिफाइड नहीं रहेंगे फिर,
वो फिर क्लासिफाइड नहीं रहेंगे। और वो कहते हैं जी कि इसके अंदर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि कुछ लोगों का नाम लिया उन्होंने कि इन्होंने लॉ तोड़ा है डेफिनेटली, और अगर लॉ तोड़ा है तो इनको जेल टर्म हो सकती है, और ये जेल टर्म 33 ईयर्स तक के लिए भी हो सकती है। तो अब ये बड़े स्यापे पड़े हुए हैं अमेरिका में, तो अब देखेंगे क्या होता है। अच्छा वाइस भाई, वाशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट है, आपने भी लिज चैनी का नाम लिया है, वो जो डिक चैनी की बेटी है उनका थोड़ा सा आपने जिक्र किया है। वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट ने जरा थोड़ी सी रोशनी डाली है इनके ऊपर कि ये हो क्या रहा है यहां पे। अच्छा ये जो है ये जाहिर है कि ये वायोमिंग के अंदर इन्होंने लूज कर दी अपनी प्राइमरी, ये जो कर रही थी अगेंस्ट हैरियट हेजमन जो कि बहुत ही ट्रंप लीनिंग है, और ये तो आपने बता ही दिया कि ये बड़ी लाउड वॉइस थी, हालांकि थी रिपब्लिकन लेकिन फिर भी ये बहुत अगेंस्ट बोल रही थी उसके ट्रंप साहब की, और कह रही थी इसने सही नहीं किया है, और बल्कि जो कांग्रेशनल जो कमेटी बैठी थी उसका भी ये मेंबर थी और हिस्सा थी उसका। तो आज इन्होंने कहा जी कि ठीक है मैंने लूज तो कर दी है वायोमिंग की जो प्राइमरी है, लेकिन फिर भी अपनी कांग्रेशनल टर्म जो है वो मैं करूंगी, और इसी तरह वायोमिंग जो की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मैं करती रहूंगी। लेकिन इन्होंने ये भी जिक्र किया जो कि जिसका जिक्र आपने भी किया है कि मैं अब जो है व्हाइट हाउस के लिए मैं कंटेस्ट कर सकती हूं, यानी मैं जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो मैं लड़ सकती हूं। आज ये जब सब बातें कर रही थी, ये खुद भी वैसे वाइस चेयरवुमन है हाउस सिलेक्ट कमेटी की, और जो कैपिटल हिल पे कर रही है, तो अपने वालिद साहब के साथ थी आज डिक चैनी के साथ जो कि वाइस प्रेसिडेंट रहे हुए हैं अमेरिका के, उनके साथ ये जो है वहां पे रिपोर्टर्स के साथ बात कर रही थी, और उन्होंने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप साहब को डिफीट इसलिए नहीं देना चाहती हूं कि ट्रंप साहब से मुझे कोई खास दुश्मनी है, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो अमेरिका जैसे कंट्री के लिए बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस है, और हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा खराब है, और हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत खराब है, और ये अगर इनकी फिलॉसफी को हम चलने देंगे तो इसमें इलेक्शंस आने वाले दिनों में डिरेल होंगे, और ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये भी डिरेल होगा।
मगर इसके तो, साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये कही ना कि शी इज अ रिपब्लिकन एंड ट्रंप साहब इज रिपब्लिकन, तो ये पहले तो कॉन्टेस्ट करेंगे कैंडिडेसी के लिए कि कौन जीतेगा, बिकम अ कैंडिडेट फॉर रिपब्लिकन। उन्होंने कहा कि अगर मैं हार गई तो आल स्टैंड
इंडिपेंडेंटली,
दैट इज क्योंकि वो फिर वो जो है
पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकेंगी ना,
वोट्स जो है फिर स्प्लिट हो जाते
हैं, स्प्लिट हो जाते हैं जी जी
ना, जो इनके चाहने वाले रिपब्लिकन वो इनको वोट देंगे, दैट विल हर्ट जनाब ट्रंप साहब।
बिल्कुल, तो बहरहाल शी इज वेरी कॉन्फिडेंट के वो इनके खिलाफ जो है अब लड़ेंगी, तो अब देखेंगे क्या होता है। कुछ इतनी मुझे वैसे इनके जो वालिद साहब थे डिक चैनी वो तो बड़े हॉकिश किस्म के थे, ये इतना स्पार्क मुझे इनके अंदर नजर आता नहीं है, बाप की तरह की है नहीं है।
शी इज वेरी स्पार्किंग।
अच्छा
चीज
अच्छा, वैसे मुझे नहीं लगती, पता नहीं क्यों, उनके वालिद साहब बड़े जो थे ना वो लगते थे, तो बहुत ही शार्प थे, वेरी वेरी शार्प डिक चैनी। अच्छा जनाब, बांग्लादेश के अंदर आज पहुंची हुई हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स मिशेल बेकले, और वो उनकी मुलाकात हुई है बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना वाजिद से, और इसके अंदर इन्होंने आज बड़े अफसोस का इजहार किया है मिशेल बेकले ने। उन्होंने कहा है कि अभी तक हालात जो हैं म्यांमार में ठीक नहीं है, और वहां पर ये रोहिंग्या मुसलमान नहीं जा सकते, तो जो लोग इनको रिपेट्रिएशन दे रहे हैं यानी कि बांग्लादेश, उनको वॉलंटरिली ये काम ह्यूमन राइट्स की अपहोल्ड के लिए करना चाहिए, और बड़े डिग्निफाइड मैनर में करना चाहिए, जब तक के सस्टेनेबल ना होए इन गरीब लोगों के लिए और इन रेफ्यूजीज के लिए वापस जाने के लिए, क्योंकि इस कम्युनिटी को बहुत वहां पे स्केप गोट बनाया गया है और मारा गया। अच्छा जी, ये बातें मिशेल बेकले ने किस कॉन्टेक्स्ट में की? ये इस कॉन्टेक्स्ट में की जब मुलाकात से पहले हसीना वाजिद साहब के जो प्रेस सेक्रेटरीज थे एहसान उल करीम साहब, उन्होंने कहा कि जी हमारी प्राइम मिनिस्टर का यह पैगाम है जो मैं आपको दे रहा हूं कि रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो बांग्लादेश के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, हालांकि ये गए हुए बांग्लादेश से हैं, ये अब म्यांमार के रहने वाले हैं और म्यांमार को चाहिए कि वो इनको वापस ले और इनकी जो है हिफाजत करे, क्योंकि हमारे लिए जो है इनकी हिफाजत करना बेतहाशा और इनको रखना और इनका खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम भी कोई इतना अमीर कंट्री नहीं है। तो जिस वक्त ये कॉक्स बाजार जहां पे कि ये रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, पहले तो वहां पे गई तो उन्होंने इनकी हालत पे बड़ा वो किया और बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कहा मिशेल बैशले ने कि भाई इनकी हालत के ऊपर थोड़ा गौर करें, और फिर आके ये प्राइम मिनिस्टर से मिली और उन्होंने कहा कि भाई आप जरा थोड़ी सी मैग्नानिमिटी दिखाएं और इनको जरा रख लें थोड़े से हौसले से जब तक के म्यांमार के अंदर हालात ठीक नहीं हो जाते। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी कि हम नहीं रख सकते अब इनको, इनको रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो हैं इनको ये अगर वो कह, उन्होंने कहा जी बड़े ओवर क्राउडेड कैंप्स हैं, उन्होंने कहा जी ओवर क्राउडेड कैंप्स हैं तो हमारे पास कोई फिर और इसका जो है वो अल्टरनेटिव नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, हम हमारे खुद जो है बेताजा पॉपुलेशन है, हमारे पास कोई जगह नहीं है इनको रखने की और म्यांमार को इनको वापस बुलाना चाहिए। तो ये आज काफी वहां पर जो है हीटेड डिस्कशन हुई। इंडिया के अंदर तो आज बहुत ही फनी कुछ जो है बातचीत चलती रही। हुआ ये कि यहाँ पे जो इंडिया के हरदीप सिंह पुरी जो हैं मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि ये जो मुसलमान रेफ्यूजीज म्यांमार से यानी कि रोहिंग्या जो आए हुए हैं दिल्ली में, इनको अपार्टमेंट्स दिए जाएंगे और इनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी और हिंदुस्तान ने हमेशा वो लोग जो के रेफ्यूज सीक करते हैं उनको बड़ा वेलकम किया है और इंडिया रिस्पेक्ट करता है और यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को फॉलो करता है, तो उन सबको विदाउट एनी डिस्टिंक्शन इन रेस रिलीजन और क्रीड हम इनको रिफ्यूज देंगे। अच्छा जी, अब जब हरदीप सिंह पुरी का ये ट्वीट आया तो इमीडिएटली जो होम मिनिस्ट्री थी इंडिया की जिसको के हेड करते हैं अमित शाह जी, अमित शाह जो है होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने इसके ऊपर जो है बड़ा रिएक्शन शो करते हुए उन्होंने कहा जी ये जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स चल रही हैं ये बिल्कुल गलत हैं, हमने इस तरह का कोई डायरेक्टिव मिनिस्टर साहब को नहीं दिया कि रोहिंग्या को अपार्टमेंट्स दिए जाएंगे, पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी और ये हमारे लिए जो है बिल्कुल इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, रोहिंग्या जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और ये भक्करवाला में रह रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, इनको ये जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं इसी में रखा जाएगा दिल्ली में और इवेंचुअली इनको इंडिया से डिपोर्ट किया जाएगा। तो जो मिनिस्टर साहब ने वादा किया है वो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर बड़ी लोगों ने हैरत का इजहार किया कि बीजेपी के एक मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं फिर होम मिनिस्ट्री कुछ कह रही है, तो व्हाट इज गोइंग ऑन है जी। ऐसे रॉयटर्स की आज एक रिपोर्ट है जी और इसके मुताबिक, अच्छा नहीं पहले पीटीआई की प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज है जिसमें के सीनियर कांग्रेस के जो लीडर हैं पी चिदम्बरम साहब आज वो बड़े भड़के हुए और गुस्से में नजर आए और उसकी वजह यह थी कि एक रिपोर्ट आई है इंडिया में और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि क्राइम्स अगेंस्ट विमेन जो है वो बहुत ज्यादा दिल्ली में बढ़ गया है। अच्छा, पी चिदम्बरम साहब जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उन्होंने कहा जी कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सेंटर के अंडर है तो फिर जो है ये तो कहते हैं बीजेपी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये अगर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का इनका नारा है तो राजधानी जो दिल्ली है उसके अंदर ही क्राइम्स जो अगेंस्ट विमेन है 17% इन द फर्स्ट 6.5 months ऑफ 2021 कैसे बढ़ गए हैं, मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि बीजेपी के पास एक्सक्यूज क्या है, ये जो अलार्मिंग डिटेरियोरेशन क्राइम सिचुएशन में हो रही है ये क्यों है, क्योंकि दिल्ली ने 1100 केसेस ऑफ रेप इन 196 डेज जो जुलाई 15 तक बनते थे उसमें किए, यानी कि 5.5 केसेस एवरी डे। इसके अलावा केसेस ऑफ मोलेस्टेशन किडनैपिंग ऑफ विमेन आल्सो इंक्रीज्ड दिस ईयर और फिर उसके अलावा डाउरी रिलेटेड डेथ्स बहुत इंक्रीज कर गई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, औरतों के ऊपर असॉल्ट जो है 19% बढ़ गया है दिल्ली में, इसके अलावा जो हस्बैंड्स और इन लॉज औरतों पे जुल्म करते हैं वो 29% बढ़ गए हैं। तो उसके ऊपर पी चिदम्बरम साहब ने कहा जी कि ये हिंदुस्तान की अपनी खुद जो नेशनल जो क्राइम डेटा है ये है और ये शो करता है, ये कहीं बाहर से कोई रिपोर्ट नहीं आई है और अगर हम ही ये रिपोर्ट कर रहे हैं ये सब कुछ चल रहा है तो फिर इसको इन लड़कियों को औरतों को प्रोटेक्शन कौन देगा, अगर सेंटर में ही अगर राजधानी में ही अगर लड़कियां जो हैं वो महफूज नहीं हैं तो फिर इंडिया के दूसरे हिस्सों में कैसे होंगी। तो ये उन्होंने आज ही बड़ा इसके ऊपर खींचा है इसको गवर्नमेंट को.
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो. ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com. QTL because we care.
यूके, स्विट्जरलैंड अते इटली तो बाद खालिस्तान रेफरेंडम दियां वोटां दा अगला पड़ा कैनेडा. कैनेडा विच खालिस्तान दियां वोटां दा पहला सेंटर ब्रैम्पटन विच लगेगा. ब्रैम्पटन विच खालिस्तान दियां वोटां 18 सितंबर दिन एतवार नूं गौर रोड ते स्थित गौर मैडोज कम्युनिटी सेंटर विच पैणगियां. होर जानकारी लई संपर्क करो 437-423-2669 जां 437-423-2668.
जी
हाँ जी, कल हमने आपको खबर बताई थी कि जो बिल्किस बानो का केस था जिसमें के 11 कॉन्विक्ट्स जो थे जिनको के रेप और मर्डर के लिए जो था वो जेल में डाला गया था, उनको छोड़ दिया गया है कल. तो ये जो इसके अंदर आज राहुल गांधी जी ने आज एक ट्वीट दी है और इन्होंने भी आज कहा जी कि जिस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था हमारे मुल्क में, यानी कि 15 अगस्त के आजादी के जश्न चल रहे थे, उस वक्त 11 कॉन्विक्ट्स को छोड़ा गया जिसमें कि एक 5 महीना जो प्रेग्नेंट औरत थी बिल्किस बानो उसको रेप किया गया, उसकी बच्ची जो है 3 साल की उसको मारा गया, उसके अलावा उसके फैमिली के 7 दूसरे लोगों को गुजरात में मारा गया. और गुजरात राइट्स जो हुए थे उसमें 2002 में, तो जब हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के हम नारे लगाते हैं, तो मोदी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि आपके वर्ड्स में और डीड्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है. अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ये जानती थी कि इनको छोड़ा जा रहा है तो फिर इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया गया. और अगर आप ये कह रहे हैं कि 1992 रिमिशन पॉलिसी के तहत इन कॉन्विक्ट्स को छोड़ा गया है, तो ये कैसे छोड़ा गया है उन लोगों को जिन्होंने के प्रेग्नेंट औरत को रेप किया, उसकी फैमिली के साथ बंदे मारे, तो ये कैसा जस्टिस है इस मुल्क के अंदर. इसके अलावा जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है पवन खेड़ा साहब, उन्होंने भी ये जो गुजरात की गवर्नमेंट है उसको बहुत ज्यादा उन्होंने खींचा. उन्होंने कहा कि ये जो केसेस थे ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी 3 महीने के अंदर रिजॉल्व करें, बट उसका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने कहा कि 3 महीने में आप 11 कॉन्विक्ट्स को छोड़ दें. ये कैसे आपने परमिशन दी है और अंडर सेक्शन 345 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसके अंडर आप इनको छोड़ ही नहीं सकते हैं, आपने इस प्रोसीजर का गलत जो है वो इस्तेमाल किया है. और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उनके खिलाफ अब लीगल एक्शन लेने की बात उनको अब करनी चाहिए इनके अगेंस्ट, वो कैसे इस चीज के ऊपर चुप बैठे हैं. इसके अलावा वो उन्होंने काफी जो है आज पवन खेड़ा साहब जो हैं उन्होंने खींचा इनको बीजेपी की जो और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी, और उन्होंने कहा जी कि पॉलिटिकल पार्टीज अब क्यों खामोश बैठी हैं, जो कि 2012 में निर्भया का गैंग रेप जब केस आया था तो उस वक्त तो ये बड़े नाच नाच के सामने आ रहे थे और मीडिया भी बड़ा आ रहा था, तो अब इसके बिल्किस बानो के केस पे सब लोग खामोश क्यों बैठे हैं. तो ये आज जी काफी जो है वहां पे डिस्कशन चलती रही, लेकिन हमारे पास आखिरी खबरें आने तक ये आई है कि बाकी भी अब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आवाज उठाने लगी हैं कि इनको कॉन्विक्ट्स को छोड़ना नहीं चाहिए था. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जी और इसके मुताबिक काबुल की आज एक मॉस्क में फिर से ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ है और वहां पे काफी सारे लोगों की कहा जा रहा है कि डेथ भी हुई है और वहां पे वुंडेड भी हैं लोग जो हैं. अब जो तालिबान की इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं तकरीबन 35 वुंडेड हैं और 20 के करीब जो हैं वो कहा जा रहा है कि अभी तक ये रिपोर्ट के डेड हैं, लेकिन ये टोल जो है इट कैन राइज. और एम्बुलेंसेज वहां पे पहुंची थी और ये जो खैर खाना का एरिया है वहां पे ये एक्सप्लोजन हुआ है और उसके अंदर जो है इसमें बाकी जो 20 लोग मरे हैं उसमें उनका इमाम भी थे मस्जिद के, उनकी भी अनफॉर्चुनेटली इमाम की भी डेथ हुई है. पाकिस्तान के अंदर जी ख्वाजा आसिफ जो हैं डिफेंस मिनिस्टर साहब, आज उन्होंने बड़े एलिगेशंस लगाए हैं इमरान खान और पीटीआई के ऊपर اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو کچھ بھی جب طیارہ جو تھا لسبیلا میں ملٹری کا کریش کیا تھا جو کہ فلڈ ریلیف آپریشن پہ تھا, تو اس کو بہت زیادہ پولیٹیسائز جو غلط قسم کی نیگیٹو جو کیمپین چلائی تھی وہ پی ٹی آئی نے انڈیا کے ساتھ مل کے کی تھی. انہوں نے کہا جی کہ 18 انڈین اکاؤنٹس ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے فائنڈ کیے ہیں, اور انڈین چینل تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کام ہم کرنا چاہتے تھے وہ عمران خان اور اس کی پارٹی پاکستان میں بیٹھ کے کر رہی ہے. اور ہماری انویسٹیگیشن نے یہ بھی شو کیا ہے کہ 529 پاکستانی اکاؤنٹس تھے, 33 اکاؤنٹس جو تھے وہ اور ڈفرنٹ کنٹریز سے تھے. تو انڈر دا کانسٹیٹیوشن اور انڈر دا لا ان سب کے اگینسٹ جو ہے ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ اسلام آباد جو ہے اس نے جناب شہباز گل صاحب کا جو فزیکل ریمانڈ ہے اس کو 48 آورز کے لیے اور بڑھا دیا ہے سیڈیشن کیس میں. اور یہ کیس ان کے سامنے جب لایا گیا تھا تو یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی جو جج ہیں زیبا چودھری, انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ میرے سامنے کیس لائیں, کیونکہ ان کو ڈائریکٹ کیا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ اس کو سنیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈائریکٹو کے اندر زیبا چودھری نے یہ ورڈکٹ آج اپنا دیتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے جو پولیس نے کہا ہے کہ اس کو اور ریمانڈ چاہیے شہباز گل کا وہ دیا جائے, تو اب ان کو ریمانڈ میں بھیجا گیا ہے. لیکن ابھی جو آخری خبریں ہمارے پاس آئی تھیں کہ شہباز گل صاحب کی حالت بے انتہا خراب ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو پمس ہسپتال میں جو ہے داخل کرایا گیا ہے, اینڈ ہی از ان آئی سی یو اس وقت جو ہے کو بالکل کمپلیٹلی وہ کلیپس کر گئے ہیں جو مارا پی ٹی اور یہ ہے. اس کے اوپر عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو دوسرے جو ہیں آفیشلز انہوں نے آج بہت زیادہ پولیس کو اور یہ جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے اس کو نہیں سوری اسٹیٹ پالیسی جو ہے اس کو کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی پالیسی بالکل ٹھیک نہیں ہے, یہ فزیکل ہیلتھ جو ہے اس آدمی کی ٹھیک نہیں ہے اور وہ بڑا ویک ہے اور اس کو صرف اس لیے مارا پیٹا اور ٹارچر کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے وہ بات اگلوائی جا سکے جو ان کے مطلب کی ہے. تو یہ جو ہے یہ بالکل کانسٹیٹیوشن اور لا کے اگینسٹ ہے, اس کو کانسپریسی کے تحت جو ہے مارا پیٹا جا رہا ہے تاکہ وہ عمران خان کے اگینسٹ بولے. تو وہ جو ہے وہ آپ یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اور ایکسٹرا لیگل ایکشن جو ہیں یہ غلط ہیں اور یہ اس طرح کے نہیں لینے چاہیے. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے جی کہ یہ جو ججز ہیں یہ کس طرح کا بھیج رہے ہیں میسج بھیج رہے ہیں, یہ جو ٹارچر کر رہے ہیں اس ٹارچر کا ان کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے, اور یہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی یہ وائلیشنز ہیں جس کو کہ یہ برباد کر رہے ہیں اور ایک بیڈ میسج دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں. اس کے علاوہ سینیٹر فیصل جاوید خان جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہر کوئی لا کے آئز میں ایکول ہونا چاہیے, لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے اس طرح سے بیہیو نہیں کر رہی ہے اور شہباز گل کو اتنا ٹارچر کر رہے ہیں کہ وہ بالکل جو ہیں بریک ڈاؤن کریں. اسد عمر نے کہا کہ یہ جو ٹارچر ہے یہ پولیس کا ان کے گھر میں گھسنا ان کو مارنا پیٹنا اور پھر اب ریمانڈ لے لینا یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کی ول کو توڑا جا سکے, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہے. فیڈرل کیبنٹ جو ہے جی اس نے 10 لوگوں کے نام انکلوڈنگ شہزاد اکبر صاحب جو کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے کلوزسٹ ایلائز میں سے تھے, ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا ہے. آج ایک میٹنگ ہوئی ہے ہائی لیول کی شہباز شریف پرائم منسٹر صاحب کے جو ہے وہ انڈر, اور اس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ جی 22 نیمز اس میں سے ای سی ایل میں سے ریموو کریں اور 10 لوگوں کے نام انکلوڈنگ شہزاد اکبر کا ڈالا جائے. جب میڈیا نے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ کن 22 لوگوں کے نام نکالے ہیں اور کن 10 لوگوں کے نام ڈالے ہیں ہمیں بتائیں, تو وہ انہوں نے گورنمنٹ نے بتانے سے انکار کر دیا اور یہ صرف کہا کہ جو یہ شہزاد اکبر ہیں ان کا نام ہم نے نیب کی ریکویسٹ پہ ای سی ایل پہ ڈالا ہے. عمران خان کو جی ایف آئی اے کا جو کمرشل بینک سرکل ہے اس نے آج ایک بھیجا تھا سرمن وہ ایک بھیجی تھی نوٹس بھیجی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس میں آ کے آپ ایف آئی اے کو جواب دیں. تو انہوں نے کہا ہے عمران خان صاحب نے انکار کرتے ہوئے ان کو آسما بیگ جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کمرشل بینک سرکل کی ان کو کہ آپ جو ہیں ای سی پی والے جو ہیں یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک رپورٹ تیار کر سکتا ہے لیکن آرڈر نہیں دے سکتا ایف آئی اے کو مجھے بلانے کے لیے جواب کے لیے انڈر پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002, کیونکہ ایف آئی اے کے پاس اس طرح کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ اتھارٹی جو ہے صرف عدالت کے پاس ہوتی ہے, یہ صرف میلیشیس ایکٹ ہے آپ کا جو آپ میرے خلاف یوز کرنا چاہتے ہیں, تو ایز اے ریزلٹ میں آپ کو نہ جواب دے ہوں نہ میں آپ کو جواب دوں گا. انہوں نے آج اپنی یہ ساری بات ان کے جو کاؤنسل ہیں انور منصور خان اس کے تحت جو ہے ان کو بھجوائی ہے. ای سی پی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان آج انہوں نے عمران خان صاحب کی جو نامینیشن ہے این اے 108 فیصل آباد بائی الیکشن سے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے پہلے کہا گیا تھا جی کہ یہ شاید ان کے سگنیچرز ٹھیک نہیں ہیں, انہوں نے کہا جی نہیں یہ سگنیچرز ٹھیک کی وجہ سے نہیں ہے, عمران خان صاحب نے اپنے ایسٹس کی ڈیٹیلز نہیں دی. عمران خان کے ایسٹس کا نہیں پتا ان کو, उनकी डिटेल नहीं दी, तो इसलिए हमने जो है इनका नाम खारिज किया है। नेशनल असेंबली के स्पीकर ने 28 जुलाई को एसआरओ जो 11 एमएनएस थे उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया था और 9 जनरल सीट्स और 2 रिजर्व सीट्स फॉर वेमेन पे कहा था कि इलेक्शन लड़ेंगे, और इमरान खान ने कहा था कि मैं इन सारी सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन अब उनको कहा गया है कि आप ये नहीं कर सकते, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं लीगल बैटल आपके अगेंस्ट जो है वो लड़ूंगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है जी, उसने आज हिंदुस्तान के अंदर एक चार्जशीट भेजी है एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को, क्योंकि उनके कुछ तलुकात कुछ अरसा पहले जो कॉन मैन थे सुकेश चंद्रशेखर उनके साथ सामने आए थे, और लेकिन जैकलिन फर्नांडिस बड़ी ही कूल नजर आई और उन्होंने कहा जी कि इट्स गोइंग टू बी ऑल ओके। उन्होंने एक शेरॉक्स वर्ल्ड का पेज जो है वो शेयर किया जिसमें कि लिखा हुआ है डियर मी आई डिजर्व ऑल गुड थिंग्स आई एम पावरफुल आई एक्सेप्ट इट्स गोइंग टू बी ओके। तो इसके ऊपर जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी जरा इनका साथ दिया, उन्होंने कहा कि ये एक्ट्रेस जो है फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो डिफरेंट लोगों से मिलते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ किसी का साथ ताल्लुक भी कोई है तो उसको बिला वजह से टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल जैकलिन फर्नांडिस ने कहा मेरे से जो भी होगा मैं ईडी के साथ करूंगी उनके साथ वो करूंगी, मैं कोऑपरेट करूंगी। ठीक है जी। और जनाब विवेक अग्निहोत्री जो हैं फिल्म मेकर उनके बीच में और अनुराग कश्यप के बीच में फिर से ठन गई है। आपको पता ही है कि विवेक अग्निहोत्री जो है उनकी कश्मीर फाइल्स आई थी जिसको कि बहुत ज्यादा जो है वो शाबाशी मिली थी, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही थी, बाकी हालांकि सारी फिल्में जो हैं वो बॉक्स ऑफिस पे बॉम होती जा रही हैं। तो इन्होंने अनुराग कश्यप ने कहा कि अभी ऑस्कर्स का वक्त आ गया है तो अगर राजामौली की RRR अगर भेजी जाएगी तो शायद वो हमारी टॉप 5 में हमें उसके लिए नॉमिनेशंस मिल जाएगी। आई होप कि ये जो कश्मीरी पंडित्स में जो फिल्म बनी है कश्मीर फाइल्स ये नहीं भेजे जाए वहां पे। उसके ऊपर जाहिर है कि अग्निहोत्री साहब बड़ा भड़क गए और उन्होंने कहा कि ये विशियस जीनोसाइड डिनायर लॉबी ऑफ बॉलीवुड हैज स्टार्टेड देयर कंपेन अगेंस्ट मी एंड कश्मीर फाइल्स एंड द ऑस्कर्स। तो आज इनके बीच में भी जरा ठनी रही। एंड जनाब लाल सिंह चड्ढा तो बिल्कुल ही बॉम्ब कर गई है। इस फिल्म को बनाया गया था एट द बजट ऑफ 180 करोड़, लेकिन अभी तक ये सिर्फ 60 करोड़ ही कर चुकी है जमा पैसे, और कहा जा रहा है कि ये नीचे जा रही है, और बहुत सी हमने आपको बताया था कि थाउजेंड्स ऑफ स्क्रीनिंग्स जो हैं इसकी उठा ली गई हैं। लेकिन जो ट्रेड एनालिस्ट हैं रमेश बाला वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, 180 करोड़ कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है हिंदुस्तान के लिए, और ओटीटी के ऊपर जब ये रिलीज होएगा तो ये पैसे इनके रिकवर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ मसला नहीं है। एंड जनाब अवर ओन द वन एंड ओनली एलॉन मस्क साहब ने जी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी आई एम बाइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड यू आर वेलकम। तो जब इन्होंने ये किया तो इस चीज को 500,000 लाइक्स मिले विद इन आवर्स और उन्होंने कहा वाओ वे टू गो वेरी नाइस, ये वो इनके आए। आपको पता ही है एलॉन मस्क दुनिया के रिचेस्ट आदमी हैं, तो कोई सोच नहीं सकता कि ये झूठ बोल रहे हैं। 103 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। तो थोड़ी देर के बाद इन्होंने कहा ओ इट वॉज जस्ट अ जोक,
दैट वॉज अ वेरी गुड जोक।
मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ ह्यूज क्लब, ठीक है वो थोड़ी मुश्किल में है, बट यू कांट से समथिंग लाइक दिस, एक ब्रांड का नाम लेके आप जोक कर रहे हैं। तो ग्लेजर फैमिली जो है उसने बड़ा इसका माइंड किया, तो अब देखेंगे इसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप जी जनाब बड़े अच्छे नोट पे शुरू की है। पहली 3 विन्स जो है पाकिस्तान ने अपने नाम पे की हैं। इस चैंपियनशिप में 23 नेशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। पाकिस्तान ग्रुप सी में है जिसमें कि नेदरलैंड्स गायना और हांगकांग हैं। इसमें सबसे पहले जो मोहम्मद अशरफ इरफान है उन्होंने लीड ली, उन्होंने हराया निकलस वर्वे को, फिर हमजा खान ने सुमारी विल्डशायर को हराया और नूर जमान ने सैमुअल इन कार्लवर्हर को हराया। तो अब इनके मुकाबले कल हैं नेदरलैंड्स के साथ मॉर्निंग में और हांगकांग के साथ इवनिंग में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वे टू गो हैं जी टीम, और इनका जो अब फाइनल होगा नॉकआउट स्टेज जो होगी अगस्त 21 को होगा। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर थे अरशद नदीम वो वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और वहां पे आए तो आपको पता ही है कि इन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स जीते थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने रिकॉर्ड भी किया था, 90.18 मीटर्स इन्होंने थ्रो किया था बर्मिंगम में और रिकॉर्ड नया कायम किया था। इसके अलावा जो साउथ एशिया में इन्होंने किया था, जो गेम्स हुई थी इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स, उसके अंदर इन्होंने 90 मीटर के ऊपर जो है अपना जेवलिन फेंका था और उसका रिकॉर्ड था, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड को बेहतर किया था 88.64 मीटर पे फेंक के। तो इनसे पूछा गया कि जनाब आप क्या चाहते हैं यहां पे पाकिस्तान में, कैसी फैसिलिटीज होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी एक तो सबसे पहले एक नया स्टेडियम बनाना चाहिए और वो नया स्टेडियम, उसमें ना तो क्रिकेट ना तो हॉकी होनी चाहिए, वो सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स के लिए होना चाहिए। तो अगर होएगा तो टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, तो वी कैन एक्चुअली विन अ लॉट ऑफ अदर मेडल्स एज वेल।
आई एग्री विद 100%।
या एंड पाकिस्तान इज अ ह्यूज कंट्री, उसमें क्या मुश्किल है एक स्टेडियम और बनाना, ओ केड़ा कनाडा है।
ठीक है
जी, तो बना दे पैन कोई गल नहीं।
ये थी हमारी आज की न्यूज एंड सब इसके फौरी बाद कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेंगे, उसके बाद साहब आपका पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक हिस्ट्री इम्पैक्ट एंड रिकॉर्ड्स, आज जनाब जीशान अहमद साहब पेश करेंगे, आज के स्टार होंगे फाखिर, नन अदर देन फाखिर। थैंक यू सो मच शाजे जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, पड़ा में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
कनेडियन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मार्केटिंग की जानिब से पेशे खिदमत है फंटास्टिक फैमिली फन फेस्टिवल, एक बार फिर आ रहा है आपके शहर ब्रैम्पटन में और साथ ला रहा है तरह तरह के चटखारेदार खाने, बच्चों के खेल, झूले, मुकाबले, लाइव शोज, ओपन एयर बाजार, शायकी ने क्रिकेट के लिए अजीमुशान क्रिकेट टूर्नामेंट और बहुत कुछ। जबरदस्त तफरी और दाखिला बिल्कुल मुफ्त ऑन August 26, 27 and 28 at CAA Center रैम्पटन। मजीद मालूमात और फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें fantasticfest.com।
द मोस्ट ग्लोरियस, द मोस्ट एक्साइटिंग, द मोस्ट स्टार स्टडेड इवनिंग इज रिटर्निंग फॉर इट्स 8th एडिशन। हम अवार्ड वंस अगेन इन कनाडा ऑन 24 सितंबर 2022, फर्स्ट ओंटारियो सेंटर। To book your tickets, log on to www.ticketmaster.ca. For Canadian sponsorship, please call 905-849-5551 or log on to hamawards.ca.
Taza Milton Halal Food Festival,
August 21st, Sunday from 12 p.m. to 10 p.m.
Free entry, free parking, musical show with the Fakhir live performance. आइए 75th सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस मिल के मनाते हैं मिल्टन कम्युनिटी स्पोर्ट्स पार्क 805 सेंटर मारिया बुलेवार्ड इन मिल्टन। फॉर स्पॉन्सरशिप एंड स्टॉल बुकिंग कॉल आमिर शमसी 4166278 61।
अकाल ट्रक एंड लू ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ, ਰਿਪੇਅਰ, ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਵਾਸ਼ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ,
ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਨਵੇਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਟਾਇਰਸ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਵਾਰੰਟੀ।
ਅਕਾਲ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਲੂ 1776 ਮੇਅਰ ਸਾਈਡ ਡਰਾਈਵ 905-565-1100
डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टलर के इंटरसेक्शन पे। बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साजो आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा। डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट 905-457-8661।
Family is everything, and no matter where they are in the world, connecting with them just got a little easier. Now when you send a CIBC Global Money Transfer, loved ones abroad can pick it up in cash the same day at their local MoneyGram location. And with no transfer fee, you'll have more to share. It's the perfect way to help them achieve their goals. With a CIBC Global Money Transfer, family is never far away. Conditions and CIBC foreign exchange rates apply. Visit cibc.com/cashpickup.
अगर आपके घर में बेड बग्स हैं या किचन में कॉकरोचेस हैं या बेसमेंट में चूहे दौड़ते फिर रहे हैं तो उसके लिए एक ही नाम याद रखिए, बायोकैम पेस्ट कंट्रोल। हम आपको बेहतरीन क्वालिटी की सर्विस बेहतरीन रेट्स पर फ्राहम करेंगे। उसके लिए डायल कीजिए 416-747-6600 या मुझसे यानी आलिजा से डायरेक्ट रब्ता कीजिए 647-848-4020।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ,
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
जी सामे नाज़रीन, वेलकम बैक अगेन। एंड 6:34:46 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और सब आप टाइम आया आपको। यस आई नो यू आर वेटिंग, यू आर वेटिंग एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर इट राइट नाउ। पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक हिस्ट्री इम्पैक्ट एंड रिकॉर्ड्स, आज जिस स्टार के बारे में हम बात करेंगे, नन अदर देन फाखिर हिमसेल्फ। फाखिर की हम मुताबिक आप बात करेंगे और हमारे साथ होते हैं जीशान अहमद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी कैसे हैं
आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ है।
हाँ,
और उसकी वजह जिस तरह आपने बताया कि फाखिर महमूद पर हम जो है थोड़ा सा प्रोग्राम करने लगे।
सही,
हम फाखिर पे प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि फाखिर खुद आ रहे हैं यहाँ पर।
खुद आ रहे हैं, कौन से तारीख को?
21 तारीख को है मेरे।
21
तारीख को यहाँ पहुंचेंगे, 21 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे, संडे का दिन है। 21 अगस्त फाखिर महमूद लाइव परफॉर्मेंस देंगे, हलाल ताजा मिल्टन फूड फेस्टिवल। मिल्टन में होगा ऑफकोर्स।
जी, मेरा अगला सवाल यही था कि कौन से शहर में होगा।
मैंने पहले बीट कर दिया आपको।
सही,
मिल्टन में होगा जी।
अच्छा, फाखिर महमूद का नाम बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक में। और जो फाखिर की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है या कैरियर है, कैरियर में कहूंगा, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उसकी हम बात करते रहेंगे गाहे बगाहे जिस तरह प्रोग्राम हम प्रोसेस करेंगे। अच्छा माजी, आपको याद है आवाज बैंड का हमने तस्करा किया था और उसमें कहा था कि हारून और फाखिर और असद अहमद, इन तीनों ने मिलकर एक बैंड एज अ बैंड जो है म्यूजिक इंडस्ट्री में आए थे और रोहेल हयात ने जो है ये बैंड फॉर्म किया था। तो 1992 में ये बैंड बनता है, फिर 1992 में एक इनका एल्बम आता है, फिर 1995 में इनका एक एल्बम आता है जादू का चरा, फिर 1996 में एक उनका तीसरा एल्बम आता है शोला एज अ आवाज बैंड। अच्छा, शोला एल्बम जब आया था वो आखिरी एल्बम था आवाज बैंड का, फिर उसके बाद जो है ये बैंड डिजॉल्व हो गया। हारून भी सोलो चले गए, असद अहमद जो है कारवान बैंड को उन्होंने ज्वाइन कर लिया और फाखिर भी है सोलो करियर में शामिल हो गए। अच्छा, जब शोला एल्बम आया तो 1996 में आया था, तो 1996 और 1998 में 2 साल का ये एक गैप था। लेकिन जो फाखिर एज अ सोलो आया वो एक पीटीवी का एक सीरियल ड्रामा था कभी कभी प्यार में, तो उसके लिए जो फाखिर ने जो ना वो गाना गाया था कभी कभी प्यार में, तो हमारा पहला गाना वही होगा जो फाखिर ने गाया था कभी कभी प्यार में, पीटीवी ड्रामा था कभी कभी। अच्छा, ये इस ड्रामे के कास्ट देखे, मैं हुमायूं सईद, महानूर बलोच, अदनान सिद्दीकी, ओ जी अली, यानी कि एक बहुत बड़ी कास्ट थी इस पर, बड़े बड़े नाम थे पाकिस्तानी ड्रामे में। तो कभी कभी प्यार में सुन लेते हैं और देख लेते हैं फाखिर का ये गाना और आते हैं इस गाने के बाद।
पहली नजर पहला मिलन बढ़ने लगी दिल की लगन, बोले बिना रहना सकूं तुझे मगर कहना सकूं मेरी जान कभी तू सुने आंखें क्या कहती कभी कभी प्यार में थोड़ी खुशी थोड़ा गम थोड़ी चले हर कदम कभी कभी جب تجھے دہی دیا جب تجھے
جی بھائی، یہ گانا آیا تھا تقریباً کوئی 1999 میں، اس کے بعد 2000 میں ایک اور ان کا سپر ہٹ گانا آیا تھا، پاکستانی نیشنل سانگ، وہ اتنا ہٹ ہوا تو میرا لگتا ہے اس گانے کی وجہ سے فاق نے سوچا کہ مجھے ایک البم بنانا چاہیے، تو 2000 میں وہ گانا آتا ہے اور 2000 کے بعد جو ہے ان کی پہلی البم آتش ڈیبیو البم ریلیز ہوتی ہے، تو وہ گانا جو ہے ہمارے سننے والے جو ناظرین ان کو پتا ہے ہم کس گانے کی بات کر رہے ہیں، دل نہ لگے، آپ جو ہے کمرشل میں بھی اس گانے کو سنتے ہیں، تو آئیے سن لیتے ہیں ایک دفعہ پھر دل نہ لگے فاخر محمود کی آواز میں.
دولت ارمان یہ میری جان، مٹا دوں تجھ پہ جانم، آندھی آئے لاکھ بڑھے طوفان، یہ چاہت ہوگی ناکام، سو باتوں کی بات تیرا ساتھ کبھی نہ چھوڑ کے جانا، بس تیرا دیدار بس تیرا پیار، تجھی کو سب کچھ ماننا، تیریا ہواوا وچ ٹھنڈیاں میں چھاوا وچ رہنا سدا، تیرے بنا دل نہ لگے، تیرے بنا دل نہ لگے، دل دیوانا تیرے لیے، تیرے بنا دل نہ لگے، پل پل تڑ پائے کچھ بھی نہ بھائے نہ رہ پائے، یہ دل دھڑکن رک جائے، لے کر آنکھوں میں تیرا چہرہ تیری خوشبو سانسوں میں، لوٹ جب میں تو میری جان، مجھے لے لے باہوں میں، گلیاں چبارے تیرے، جگ دے نظارے تیرے، چلنے تیرا، ہو ہو ہو، تیرے بنا دل نہ لگے، تیرے بنا دل نہ لگے، دل دیوانا تیرے لیے، تیرے بنا دل نہ لگے.
جی مجھ بھائی، تیرے بنا دل نہ لگے،
یا بیوٹیفل سانگ، بیوٹیفل سانگ.
اچھا وہ چونکانے والی باتیں کریں،
اسی لیے تو لوگ بیٹھے ہیں آپ کو پڑھا دیکھنے کے لیے.
ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں مہیش بھائی، فاخر کی آواز تو اچھی ہے، ٹھیک ہے نا، میلوڈی بھی اچھے بناتے ہیں، میوزک دیتے ہیں، گاتے بھی اچھا ہیں، ٹھیک ہے، کانوں کو تو اچھا لگتا ہے. ایک اور کریڈٹ فاخر کو یہ دینا پڑے گا کہ وہ جو میوزک ویڈیو بناتے ہیں وہ بھی آپ کو آنکھوں کو بڑا باتی ہے، اس پہ جو کام ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے. اور یہ میں بات کیوں کرنے لگا ہوں، آتش البم میں ایک گانا تھا ان کا دل ربا، اس ٹائم پہ دل ربا پاکستان کا سب سے مہنگا میوزک ویڈیو تھا،
بیکاز آف دا فوٹوگرافی اینڈ
پٹ ٹو گیدر. بالکل بالکل. اور دل ربا کے بعد جو ہے ہم جس گانے کی ہم بات کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ کام نظر آتا ہے. وارڈروبس کی ہم بات کر لیں، پراپس کی ہم بات کر لیں، ٹھیک ہے، وہ سیٹنگ ہے، کیمرا ہے،
سینماٹوگرافی ہے،
جی، اور جو اس میں جو کاسٹ ہے بہت بڑی بڑی کاسٹ ہے، بہت زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں، تو یہ آپ دیکھیں گے. اچھا تو دل ربا ہو جائے تو دیکھ لیتے ہیں پاکستان کی سب سے مہنگی میوزک ویڈیو اس زمانے میں، دل ربا.
تجھ کو اپنے سنگ لوں میں، رنگ ایسا رنگ لوں میں، جان تجھ پہ بار دوں میں، تجھ کو اپنے سنگ لوں میں، رنگ ایسا رنگ لوں میں، جان تجھ پہ وار دوں میں. گئی ہر سو دل کی باتیں کر کے دیکھی ایک تجھے پہ مر کے دیکھی کھو گیا تو کہاں دل ربا او دل ربا دیکھ تیری میں اجانی چاہوں تیری میں وفائیں دل یہ دیتا ہے صدائیں عشق میں ہم ڈوب جائیں تیرا چہرہ اور وہ زلفیں چھا گئی ہر سو دل کی باتیں کر کے دیکھی ایک تجھے پہ مر کے دیکھی دل کی باتیں کر کے دیکھی ایک تجھے پہ مر کے دیکھی کھو گیا تو کہاں دل ربا او دل ربا toma que toma que toma toma que toma te quiero mucho ya ti toma que toma que toma toma que toma te quiero mucho ya ti.
Taza Milton Halal Food Festival,
August 21st, Sunday from 12 p.m. to 10 p.m.
Free entry, free parking, musical show with the Fakhir, live performance. آئیے 75th سیلیبریشن آف پاکستان انڈیپینڈنس مل کے مناتے ہیں ملٹن کمیونٹی اسپورٹس پارک 805 سینٹا ماریا بولیوارڈ ان ملٹن. فار اسپانسرشپ اینڈ اسٹال بکنگ کال امیر شمسی 416-662-7861.
جی سامع ناظرین ویلکم بیک اگین اینڈ پاکستانی پاپ میوزک ہسٹری امپیکٹ اینڈ ریکارڈز یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. ذیشان احمد میرے ساتھ ہیں. آج کے جو اسٹار ہیں ہمارے وہ ہیں نن ادر دین فاخر محمود. فاخر محمود کیوں؟ اس لیے کہ فاخر محمود تشریف لا رہے ہیں ہمارے ٹورانٹو میں. تازہ ملٹن حلال فوڈ فیسٹیول ہونے جا رہا ہے 21st of August, سنڈے کا دن ہے. 12 بجے سے لے کے رات کو 10 بجے تک یہ ہوگا. کہاں ہوگا؟ آرفا جی کہتے ہیں نا 805 سینٹا ماریا بولیوارڈ. ہاں جی, سینٹا ماریا بولیوارڈ ملٹن میں یہ ہوگا. فری انٹری ہے, فری پارکنگ ہے, اور بس آپ نے پہنچنا ہے وہاں پر. عامر شمسی کا نمبر ہے 416-662-7861. اگر آپ نے ابھی بھی اسٹالز وغیرہ بک کرانے ہیں, کیونکہ بہت سارے کھانے پینے کے اسٹالز وغیرہ ہوں گے, کپڑوں کے ہوں گے, مہندی کے ہوں گے, تو آپ بھی اگر کوئی اسٹال بک کرانا چاہتے ہیں تو عامر شمسی کو آپ ٹیکسٹ کر دیں 416-662-7861. جی
اچھا مہیش بھائی, آپ کو اور چوکا ہو یا تھوڑا گانا سن لیں؟
نہیں نہیں, چوکا تو پہلے
چوکا تھا.
ہاں
اچھا, 2007 میں پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا تھا فاخر محمود کو, ان کے ان کی یعنی کہ جو کنٹریبیوشن ہے پاکستانی پاپ میوزک پہ.
امیزنگ, آئی ڈنٹ نو دیٹ.
اچھا دیکھیں, چونک گیا.
چونک گیا ابھی, چونکا ہوں.
اچھا صحیح ہے. اچھا ریشم کا آپ جانتے ہیں جو پاکستانی ایکٹریس ہیں؟
ریشم,
جی جی. اچھا وہ تھوڑا سا غائب ہو گئی تھی فلمی اس پہ دنیا سے, تو پھر وہ فاخر کے ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو میں کام کیا تھا دیوانہ. اور دیوانہ جو ہے وہ آتش البم تھا ان کا پہلا جو ڈیبیو البم جس کے ہم بات کر رہے ہیں. اس گانے کے بعد جو ہم دوسرے ان کا جو البم آیا تھا 2003 میں, ہم اس کی بات کریں گے. تو آئیے سنتے ہیں فاخر کا گانا دیوانہ.
دل دل سے کہہ رہا
मेरा ही फसाना, जोगी हूँ तेरा ये मेरा दिल है दीवाना, दिल दिल से कह रहा मेरा ही फसाना, क्यों बज रहा है हर सू तेरा ही तराना, जोगी हूँ तेरा ये मेरा दिल है दीवाना,
दीवाना ओ दीवाना, दिल दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना ओ दीवाना, दिल दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना।
मेरी आँखों में तेरे सपने हैं, मेरे सपनों में तेरी आँखें हैं, जिक्र है तेरा लबों पे मेरे, दर्द है मेरा जिक्र में तेरे, सुन जा मेरी जान दिल जख्मी का बसारा, देखो ना मेरी जाना मैं कैसा दीवाना, ताने मुझे देता है सारा ये जमाना, जोगी हूँ तेरा ये मेरा दिल है दीवाना,
दीवाना ओ दीवाना, दिल दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना ओ दीवाना, दिल दीवाना तेरा दीवाना।
जी
मैं आपको एक पाकिस्तानी फिल्म याद है होम एंड जान,
होम एंड जान है जान।
जी जी नई फिल्म आई थी 2015 में, उसमें भी जो म्यूजिक है वो भी फाखर ने दिया था, यानी कि उनकी भी कंट्रीब्यूशन थी।
अच्छा अच्छा,
तो देखें ऐसा ऐसा हम जो है फाखर का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग बताते रहे। अच्छा इस गाने से पहले मैं आपको कह रहा था उनका सेकेंड एल्बम 2002 में उनका आतिश एल्बम आता है डेब्यू एल्बम, और उनका दूसरा एल्बम आता है 2003 में सब तो सोनी है,
राइट अवे एक साल के अंदर,
एक साल के अंदर दो। और मजबूत भाई ये गाना इतना पॉपुलर हुआ आप देखेंगे, सब तो सोनी है, वो जो न्यू जहां का जो गाना था वो जो रिमिक्स किया जिस हिसाब से, और ये पहला गाना जो है फाखर ने रिमिक्स किया था किसी भी, यानी गोल्डन जो सॉन्ग है पाकिस्तान का वन ऑफ द टॉप सॉन्ग में उसमें आता है। तो ये हम गाना सुन लेते हैं और देखते हैं फाखर की आवाज में सब तो सोनी है।
जदों जदों दिल किसे दा डोले ते हर सा तक धना धन बोले, ते नवा नवा रस इशक दा कोले, तू सानू पुली ना तेनू वेख के लू लू बोले, नी सब तो सोनिए हाय नी मन मोनिए, नी सब तो सोनिए हाय नी मन
लोगों को ये बता दूं क्या, आप तो सिर्फ फाखर के गीत प्ले कर रहे हैं और देख भी रहे हैं आप, मगर इन पर्सन, यस इन पर्सन अगर आपने फाखर को देखना है ना तो एब्सोल्युटली फॉर फ्री। बड़े स्टारों को कभी फ्री देखा है आपने? लीजिए साहब आपके लिए पेश करते हैं एब्सोल्युटली फॉर फ्री, फ्री एंट्री फ्री पार्किंग 21st of August, मार्क कर लें अपनी कैलेंडर पर, संडे का दिन है। पूरी फैमिली को लेके पहुंची है, आपने कहा ना 805 सेंटा मरिया बुलेवार्ड मिल्टन में, मिल्टन कम्युनिटी स्पोर्ट्स पार्क जो है ना उसके अंदर आएंगे ये, पूरे पूरे दिन जो है वहां पर मेला लगा होगा
जी जी.
क्योंकि ये कहलाता ही है ताजा मिल्टन हलाल फूड फेस्टिवल. आमिर शमसी इसके पेश कर रहे हैं आपके लिए. 4166627861 आमिर शमसी का फोन नंबर है जी.
तो मैं इनसे मिल भी सकता हूँ?
आप मिल सकते हैं, आप इनके साथ तस्वीर खिंचवाइएगा.
तस्वीर खिंचवाते हैं
इनके साथ? यादगार तस्वीर.
अच्छा, इनके साथ हम गाना भी गा सकते हैं?
मेरा ख्याल है दैट्स अ गुड आइडिया.
अच्छा,
इनके साथ मिलकर गाना भी गाइए आप.
जरूर, क्योंकि मैंने देखा था हमारे कुछ दोस्तों ने जब पिछली दफा ये आए थे तो ये बड़ा एंटरटेन करते हैं जो वहाँ पे ऑडियंस होती
है. मैंने हमेशा फाखिर के लिए कहा है कि इज नॉट ओनली अ सिंगर, ही इज अ कम्प्लीट पैकेज एंटरटेनर है.
बिल्कुल बिल्कुल. तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
जी.
ठीक है, उनके दूसरे एल्बम जो सब तो सोनी है उसका आपने गाना भी देखा. अच्छा, जो गेम चेंजर है माजवा उसकी बात करते हैं. 2005 में उनका तीसरा एल्बम आया था मंत्रा, और मंत्रा में आपका फेवरेट गाना भी शामिल है.
ठीक है
ना, तोबा तोबा भी तोबा तोबा भी है, और उस जिस गाने की मैं बात कर रहा हूँ
वो बाद में
भी होगा,
मगर मैं तोबा तोबा कर रहा हूँ.
अच्छा अच्छा, मैं भी देखें इस एल्बम में 11 से 12 गाने हैं, और इस एल्बम के जो है तकरीबन 5 से 6 म्यूजिक वीडियो है फाखिर ने बनाई.
Wow.
तो देखें इतना यानी के
टैलेंट
है, और बहुत ज्यादा इन्होंने जो काम किया उन्होंने था ऑडियो के जरिए, तो उन्होंने अपने म्यूजिक को प्रमोट किया और वीडियो के जरिए भी किया. और वीडियो जिस तरह हम बात कर रहे थे दिलरुबा में, आप मंत्रा एल्बम के जो गाने हैं उनकी सारी वीडियोस आप देखिएगा किस तरह उस पर जो है काम हुआ है. उस पर जो है कास्ट आप देख लें, वार्डरोब हो गए, कॉस्ट्यूम हो गए, प्रॉप्स हो गए, कास्ट हो गए, ये सब आप सारी चीजें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ फाखिर जो है ना वाकई ही सीरियस अबाउट म्यूजिक वीडियोस. ठीक है ना, तो तौबा तौबा कर लें.
तौबा तौबा कर लें.
ठीक है, फाखिर की आवाज में तौबा तौबा.
आंखों में शबाब है, चेहरा ये गुलाब है, हर अदा अजाब है, हुस्न बेहिसाब है, तू जो बेनकाब है. तौबा है, 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 तौबा है. जुल्फों को छूकर तुम जब मुस्कुराती हो, जुल्फों को छूकर तुम जब मुस्कुराती हो, देखने वालों पे बिजली गिराती हो. अल्लाह आफत कयामत हो तुम, मैं दिल हूँ और दिल की चाहत हो तुम. हर अदा अजाब है, हुस्न बेहिसाब है, जो बने काम है. तौबा है, 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 तौबा है.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
UK, Switzerland, ate Italy to baad, Khalistan referendum diyan votaan da agla pada, Canada. Canada vich Khalistan diyan votaan da pehla center, Brampton vich lagega. Brampton vich Khalistan diyan votaan, 18 September, din aitwar nu, Gore Road te sthit, Gore Meadows Community Center vich pehn giyan. Hor jaankari li sampark karo, 437-423-2629 ਜਾਂ 437-423-2666.
कनेडियन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मार्केटिंग की जानिब से पेशे खिदमत है फंटास्टिक फैमिली फन फेस्टिवल एक बार फिर आ रहा है आपके शहर ब्रैम्पटन में और साथ ला रहा है तरह तरह के चटखारेदार खाने बच्चों के खेल झूले मुकाबले लाइव शोज ओपन एयर बाजार शायकी ने क्रिकेट के लिए अजीम शान क्रिकेट टूर्नामेंट और बहुत कुछ जबरदस्त तफरी और दाखिला बिल्कुल मुफ्त ऑन अगस्त 26th, 27th and 28th एट CAA सेंटर Brampton. مزید معلومات اور فری رجسٹریشن کے لیے وزٹ کریں fantasticfest.com.
The most glorious. The most exciting. The most star-studded evening is returning for its 8th edition. Hum Awards, once again in Canada. On 24th September 2022, First Ontario Centre. To book your tickets, log on to www.ticketmaster.ca. For Canadian sponsorship, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca.
Taza Milton Halal Food Festival.